ओम शांति। आबू की इस हरी भरी वादियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब एक बहुत ही अच्छे स्थान पर आए हैं और यहाँ का वातावरण भी बहुत सुंदर है। आप में से बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके होंगे यहाँ पर और आबू की विशेषता से आप लोग जरूर अवगत ही होंगे और यहाँ के इस सुंदर वातावरण में ब्रह्मा कुमारी का जो ये स्पार्क विंग है वो हर वर्ष देश भर, देश क्या बल्कि विदेशों से भी इस SIR कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हर वर्ष SIR के बैनर तले आयोजित करता है जिसका लक्ष्य है स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स। जो भी हमारे रिसर्च करने वाले भाई बहने हैं उनके अंदर कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को लाएं ताकि जो रिसर्च वो करें वो मानवता के कल्याण के लिए हो, मानवता के सुख के लिए हो। रिसर्च तो बहुत सारे किए जाते हैं परंतु सारे रिसर्च मानवता के कल्याण के लिए नहीं होते हैं, न ही मानव जाति के सुख के लिए होते हैं, कुछ उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी का और उसके बैनर तले स्पार्क प्रभाग का, स्पार्क विंग का ये लक्ष्य रहता है, उसका सतत ये प्रयास रहता है कि जो भी हमारे विज्ञान जगत के लोग हैं उनमें ये आध्यात्मिकता की जो एक आध्यात्मिकता का जो रस है, जो ताकत है, वो उनके अंदर भरी जाए ताकि उसके आधार से हम समाज के लिए जो चीज भी निर्मित करें उससे हम सबको सुख मिले, ये समाज उन्नति की ओर जाए, उसका चरित्र उत्थान हो। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग बहुत ही सुंदर थीम के साथ स्पिरिचुअलिटी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इनोवेटिंग न्यूअर एवेन्यूज इस थीम को लेकर के इस वर्ष का जो 19th SIR कॉन्फ्रेंस है वो हम करने जा रहे हैं जिसका आज रिसेप्शन सत्र है। तो इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जो भी मंच पर आसीन होने वाले हमारे मेहमान हैं, वक्ता हैं, हम उनको चाहेंगे कि कृपया आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। तो हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हमारे सम्माननीय अतिथियों को, आदरणीय अलका दीदी जी, आदरणीय अंबिका दीदी जी कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें, कामाक्षी अय्यर जी, प्रभा दीदी जी, सरोज दीदी, डॉक्टर ललित वर्मा जी, राजेश सक्सेना जी, मलेशिया की अमूथा वरित राजू जी, कृपया सभी गणमान्य अतिथियों से हमारा अनुरोध है कि मंच पर आएं और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अलका दीदी जी, आदरणीय अंबिका दीदी जी, डॉक्टर कामाक्षी जी, कामाक्षी अय्यर जी, प्रभा दीदी जी, सरोज दीदी, डॉक्टर ललित वर्मा जी, राजेश सक्सेना जी, डॉक्टर अमूथा वरित राजू जी कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार हम चाहेंगे कि जोरदार करतल ध्वनि से हमारे इन गणमान्य अतिथियों का आप सब स्वागत करें और उससे भी जोरदार ताली आप लोग एक बार अपने लिए भी बजाएं। आप भी हमारे लिए उतना ही गणमान्य हैं, आप सब सभा की शोभा हैं और सभा में कोई मंच पर बैठता है, कोई सभा में बैठता है, परंतु संसार को स्वर्णिम बनाने में सबका समान सहयोग होता है। तो हमारे लिए आप दोनों ही अमूल्य हैं। ब्रह्मा कुमारीज का एक कॉन्सेप्ट है स्वर्ग का, सतयुग का। ब्रह्मा कुमारीज का ऐसा मानना है कि जो पूरा संसार है 5000 वर्षों का एक ड्रामा है, एक खेल है, जिसमें चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग त्रेता, इसे हम स्वर्ग कहते हैं, जहां पर केवल सुख होता है, दुख का कोई नामो निशान नहीं होता है, जहां पर देवी देवताएं रहते हैं। परंतु उसके बाद जो संसार आता है द्वापर और कलयुग, जिसे हम नर्क की तुलना, नर्क से तुलना करते हैं, उसमें सुख और दुख दोनों ही साथ साथ चलते हैं। सुख भी होता है तो जीवन में कभी कभी दुख भी आता है, और आप सबको बताते हुए थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच करनाल प्रेम नगर से हमारे एक बड़े ही पुराने ब्रह्मा कुमार भाई बीके अशोक कुमार जी आए हुए थे, और अचानक अस्थमा अटैक उनको आया अभी करीब 5 बजे के 4:30 बजे के आसपास, और उन्होंने बाबा के घर में इस पावन धरती पर अपना देह त्याग किया। तो जैसा कि मैंने कहा कि सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं, तो हम सब एक तरफ सुख लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ये दुख का कारण भी है। तो हम सब अभी जब योग में बैठेंगे तो उस आत्मा के लिए भी जरूर योग करेंगे, थोड़ा सा अपने योग का सहयोग देंगे। वैसे तो अशोक कुमार जी लंबे समय से राजयोग के अभ्यासी थे, उस आत्मा ने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं, वो आत्मा जहां भी जाएगी उसकी यात्रा सुखद ही होगी, लेकिन उसमें अगर हमारा योग शामिल हो जाता है तो उसकी आगे की जीवन यात्रा और सरल, सुगम और सुखद हो जाएगी। हमारे यहाँ की परंपरा है कि जब भी हमारे ईश्वरीय परिवार से कोई जाता है तो हम सब अपना योग का सहयोग उसे जरूर देते हैं। हमारी परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत परमात्मा की याद से करते हैं, उसका अंत भी हम परमात्मा की याद से ही करते हैं। तो अभी हम 3 मिनट के लिए प्रभु स्मृति में बैठेंगे, और उस प्रभु स्मृति में हम अपने परम आदरणीय बीके अशोक कुमार भाई जी, जो कि करीब 75-80 साल के बीच में रहे होंगे, आप करनाल से थे, हम आपको आपके लिए योग का अपना जरूर सहयोग देंगे, आप सब भी उस आत्मा के लिए योग करेंगे। तो अभी हम बैठते हैं प्रभु स्मृति में। अभी प्रभु स्मृति के बाद हम अपने बहनों से अनुरोध करेंगे कि जो भी हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनका पुष्प गुच्छों से स्वागत करें। आप सब ताली बजाने में कंजूसी ना करें, ताली बजाना वैसे भी अपने आप में एक सुंदर व्यायाम है, तो ताली बजाते रहें, और जो भी हमारे अतिथि हैं उनका आप सम्मान भी करें, उनका उत्साहवर्धन भी करें। आपके लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं, बहुत सुंदर ज्ञान का खजाना लेकर के आए हैं जो आप सबके बीच साझा करेंगे, तो आप सब अपने करतल ध्वनि से उनका आभार भी करें, उनका अभिनंदन भी करें, उनका स्वागत भी करें। हमारे मेहमानों का उस गुच्छों से, बैज से स्वागत हो रहा है। इसके बाद हमारे हेडक्वार्टर का अपना एक बहुत सुंदर ग्रुप है, जिसे हम लोग मधुर वाणी ग्रुप के नाम से जानते हैं, और इस मधुर वाणी ग्रुप की ये विशेषता है कि किसी भी विषय पर किसी भी प्रभाग के लिए इन्हें आप सिर्फ 24 घंटा पहले भी बोल दें तो बहुत सुंदर गीत तैयार कर देते हैं। हमारे सतीश भाई जी हैं और उनका ग्रुप है, एक बार चाहूंगा सतीश भाई जी अपना हाथ हिला करके थोड़ा सबको बताएं। सतीश भाई जी एक बहुत ही गुप्त परंतु महान शख्सियत हैं, इन्होंने अब तक हजारों गीत बाबा के लिखे होंगे, और मैं समझता हूं 1000 से अधिक आपके गीत रिकॉर्ड हो चुके होंगे जो आप सब ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पे यहां सुनते हैं। मैक्सिमम आपके ही गीत लिखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई भी ऐसी महान सिंगिंग हस्ती होगी जो आपका गीत न गाया हो। सभी हस्तियों ने आपके लिखे हुए गीत गाए हैं और आपके शब्दों की बड़ी सराहना होती है। तो अपने मधुर वाणी ग्रुप, अपने मधुर शब्दों से आप सबका और हमारे मंचासीन अतिथियों का एक बहुत सुंदर गीत के माध्यम से स्वागत करने जा रही है आदरणीय मधुर वाणी ग्रुप।
ओम शांति। सभी कहें एक बार ओम शांति। अरावली आबू की भूमि उत्तम तपोभूमि स्थान है। वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं के लिए यहाँ कितने अगणित होते अनुसंधान हैं, और यहाँ इस तपोभूमि में ये वरदानी भूमि का वरदान है और आपका इस भूमि में स्वागत है, सम्मान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। बात बोल
निकले प्रकाश से अब होना जग उजियार है। प्रत्यक्षता और परिवर्तन का लिखना एक इतिहास है। इस पार्क निकले प्रकाश से अब होना जग उजियार है। प्रत्यक्षता और परिवर्तन का लिखना एक इतिहास है। सद्भावना का सभागार ये स्वागत को तैयार है। ज्ञान सरोवर आइए, आनंद अपरंपार है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। राजयोग की प्रयोगशाला योग का नित्य प्रयोग हो। सकारात्मक परिवर्तन में सबका ही सहयोग हो। राजयोग की प्रयोगशाला योग का नित्य प्रयोग हो। सकारात्मक परिवर्तन में सबका ही सहयोग हो। आध्यात्मिकता से बदलना ये धरती आकाश है। सरोवर आइए, आनंद अपरंपार है। सद्भावना का सभागार ये स्वागत को तैयार है। ज्ञान सरोवर आइए, आनंद अपरंपार है। शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम।
आप तालियों से अपना अभिनंदन स्वीकार।
उन्नति में ही सबकी उन्नति का संसार भरा। आत्म परिवर्तन से होगी परिवर्तित ये वसुंधरा। आत्म उन्नति में ही सबकी उन्नति का संसार भरा। आत्म परिवर्तन से होगी परिवर्तित ये वसुंधरा। अपने संस्कारों को बदल बदलना ये संसार है। ज्ञान सरोवर आइए आनंद अपरंपार है। सद्भावना का सभागार ये स्वागत को तैयार है। ज्ञान सरोवर आइए आनंद अपरंपार है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अरावली आबू का कण कण आपका स्वागत करता है। अपने घर में आप पधारे हर मन हर्षित होता है। अरावली आबू का कण कण आपका स्वागत करता है। अपने घर में आप पधारे हर मन हर्षित होता है। आध्यात्मिक संसार में मिलता प्रभु परिवार है। ज्ञान सरोवर आइए आनंद अपरंपार है। इस पार के निकले प्रकाश से अब होना जग उजियार है। प्रत्यक्षता और परिवर्तन का लिखना एक इतिहास है। सद्भावना का सभागार ये स्वागत को तैयार है। ज्ञान सरोवर आइए आनंद अपरंपार है। शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई जी, नितिन भाई जी और बिथिन भाई जी। आप सब बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और बहुत सुंदर गीत गाते भी हैं और लिखते भी हैं, और उसका एग्जाम्पल आपने देखा। सतीश भाई जी का ये स्वागत गीत सुनते सुनते हमारे बीच दो नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं, उनके मन में भी ये इच्छा जागी कि हम अपने मेहमानों का स्वागत नृत्य के द्वारा करें। तो अंबरनाथ महाराष्ट्र से हमारे बीच दो बहुत छोटी छोटी कन्याएं आ रही हैं, जिनका नाम है कुमारी परी और कुमारी ऐश्वर्या। वो अपने नृत्य के द्वारा मेहमानों का स्वागत करेंगे। अभी हमारे बीच सरोज दीदी जी पधारी हैं, तो हमारी बहनों से अनुरोध है कि उनका स्वागत करें पुष्प गुच्छ और बैस से। तो हम इन दोनों कन्याओं का, दोनों बच्चियों का जोरदार करतल ध्वनि से मंच पर हम इनका स्वागत करेंगे, और एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर के आ रही हैं कुमारी परी और कुमारी ऐश्वर्या। ये बच्चियां बहुत छोटी हैं, परंतु अपने बाल्यकाल से ही राज्यों का नियमित अभ्यास करती हैं। माता पिता के साथ ये लोग सेवा केंद्र पर जाते हैं और बहुत सुंदर योग का अभ्यास करते हैं। तो अभी हम देखते हैं इन दोनों बच्चियों को।
स्वागतम स्वागतम
धन्यवाद कुमारी परी और कुमारी ऐश्वर्या को। थोड़ा जोर से ताली बजाए इन नन्ही बच्चियों के लिए। इतनी छोटी छोटी कन्याएं पर इसी बाल्यावस्था में इतनी अच्छी अच्छी कलाओं से सुशोभित ये बच्चियां, ये राज्यों का एक जीवंत उदाहरण है। अभी हम अनुरोध करेंगे हमारी आदरणीय अलका दीदी जी से। अलका दीदी जी शब्दों के द्वारा आप सबका स्वागत करेंगी। अलका दीदी जी हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक बहुत ही वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका हैं। पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से आप समर्पित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हुए समाज की सेवा कर रही हैं। आप कल्याण से हैं और कल्याण और आसपास के जितने भी सेवा केंद्र हैं उसकी आप संचालिका हैं। आपका सौम्य शीतल और बहुत ही मधुर स्वभाव बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है और आपको देख करके बहुत सारी हमारी बहनों ने अपना जीवन इस यज्ञ में समर्पित किया है, जो भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर रहते हुए सेवाओं को संभालती हैं और उसमें आपकी मददगार रहती हैं। भारत में हम जानते हैं कि पद्मश्री और पद्म भूषण ये बड़े ही बड़े किस्म के ये अवार्ड्स माने जाते हैं और कल्याण, मुंबई और आसपास में बहुत सारे लोग जो पद्मश्री अवार्डीज हैं और पद्म भूषण, पद्म विभूषण से बहुत सारे इस क्षेत्र के लोगों की सेवा आपने की है। और अभी कुछ वर्ष पूर्व एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें करीब 25-30 पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्डीज लोग आए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को लाने के आप निमित्त बनी थी और आप इस स्पार्क विंग के महाराष्ट्र जोन की जोन कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी आदरणीय अलका दीदी जी, हम चाहेंगे कि अपना वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करें।
ओम शांति। इस ज्ञान सरोवर जो परमात्मा का प्यार का सरोवर है और इस सरोवर के अंदर आप सभी आए हैं और आप सबके स्वागत का हमें सुनहरा अवसर मिला है, तो हम सबसे पहले अपने प्यारे परम परमात्मा जिनके ही स्नेह भरे निमंत्रण से सब यहाँ पहुंचे हैं, तो उस प्यारे पिता परमात्मा का हम इस सभा में स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ साथ आज हमारी इस मंच को सजाने वाले, इस ज्ञान सरोवर को बनाने वाले हमारी अव्यक्त मूरत दादियां, जिन्हों की वर्षों की तपस्या इस सरोवर को बहुत अपनी तपस्या के बल से शक्तिशाली बनाया हुआ है, उन दादियों के साथ हमारे इस पार्क विंग के निर्माता जो हमारे आदरणीय भ्राता रमेश जी जो इस समय पर अव्यक्त स्वरूप से हमें अपनी सकाश दे रहे हैं, हम उन्हें भी भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने ही आप सभी को याद किया था एक समय और उन्होंने ही कहा था ऐसे हमें विश्व की महान विभूतियों का आह्वान और उनका स्वागत अपने करना है। आज उनके शुभ संकल्पों को साकार हम देख रहे हैं तो उनको भी अपने साथ उपस्थित अनुभव कर रहे हैं और साथ साथ आज हमारे मंच पर उपस्थित हमारी दादियों की प्रतिमूर्ति, हमारी बड़ों के आशीर्वाद जिन्होंने अपने जीवन में समाये हुए हैं, ऐसे हमारी सम्माननीय मूर्ति हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी जो हमारी स्पार्क विंग की चेयरपर्सन है और वर्तमान समय पर आप सभी उन्हीं के निमंत्रण पर यहाँ पहुंचे हुए हैं। दीदी जी एक स्नेह की ममता में मूर्त है जो अपनी स्नेह भरी पालना से सभी की पालना करती है और विशेष दीदी जी वर्तमान समय बेंगलोर में है और आज दीदी जी को उपस्थित पाकर बहुत खुश हो रहे हैं। दीदी जी आपका बहुत 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 दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में हम जिस कैंपस में बैठे हैं वहाँ हमारी डायरेक्टर आदरणीय प्रभा दीदी जी जिन्होंने हम सभी के लिए इतनी सारी व्यवस्था करके हम सभी को आरामदायक स्थान दिया है। हमारी आदरणीय प्रभा दीदी जी ज्ञान के कुशल गंगा है, हम सभी को ज्ञान के प्रभाव में ले जाएगी और उनकी आप प्रभा मंडली हम देख रहे हैं उस परमात्मा की याद दिलाता है। ऐसे हमारे आदरणीय प्रभा दीदी जी आपका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और साथ में इन दीदियों के आमंत्रण पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारे अतिथिगण जिन्होंने आज इस मंच पर हम सभी को कुछ देने के लिए और यहाँ से कुछ प्राप्त करने के लिए वो हमारे इस निमंत्रण पर आए हैं। तो प्रथम मैं कहती हूँ कि हमारे बीच हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर कामता जी अय्यर जो प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सल स्किल टेक यूनिवर्सिटी मुंबई से है। आप शिक्षा जगत के वदीप स्तंभ हैं जिन्होंने आधुनिक तकनीकी और मानवीय मूल्य को साथ लेकर चलने का मार्ग दिखाया है। आपकी उपस्थिति हमें ये प्रेरणा देती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाए और ये इनके प्रैक्टिकल जीवन से हम देख रहे हैं। इनके कॉलेज में हम जा चुके हैं और इन्होंने अपने विद्यार्थियों को बहुत बहुमूल्य ज्ञान का प्रकाश देने का पूरा प्रयास इनका चल रहा है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से इस सभा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में हमारे मंच पर विराजमान है डॉक्टर ललित शर्मा जो अतिरिक्त मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के रहे हुए हैं और हम जानते हैं प्रशासन की सेवा एक बहुत व्यवस्थित और प्रशिक्षित होती है और आप उस सेवाओं में अपनी ईमानदारी और समर्पण का आदर्श बनकर के रहे हैं। आज आपका यहाँ आना हमें ये अनुभव कराता है कि नीति और निष्ठा से ही एक सच्चा शासन संभव है। आपका यहाँ सभा में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अगले हमारे मेहमान हैं श्री राजेश सक्सेना जी जो हेड साइंटिफिक एडवाइजर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट से हैं। इनके परिचय में हम देखते हैं कि आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आयुर्वेद को आधुनिक शोध से जोड़ने का प्रयास वास्तव में अद्वितीय है। आप विज्ञान और परंपरा को मिलाकर मानव स्वास्थ्य की सेवा कर रहे हैं और आपके इन सेवाओं का और आपका तहे दिल से हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब आई सभा में मंच में बैठे हुए डॉक्टर अमुथा वरत राजू जी जो मलेशिया से हैं, तो हमें बहुत आज हमारे सभा को इंटरनेशनल कर दिया आपने और आपका जीवन संकट की घड़ी में सेवा का प्रतीक है। आपने असंख्यों को जीदान दिया है। आपका यहाँ होना हमें करुणा और कर्तव्य का पालन का संदेश दे रहा है। आपका भी इस मंच पर सभा में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ में हमारी आदरणीय सरोज दीदी, आप सहजता और सरलता से हर वातावरण को बहुत मधुर बना देती हैं। आप आज हमें बहुत सुंदर मेडिटेशन गाइड कराएंगे और आप उसके द्वारा हमें उस परमात्मा से मिलाने का एक बहुत सुंदर विधि विधान सिखाएंगे। आपका भी सभा में तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है। सरोज दीदी हमारी दिल्ली से हैं। साथ में अभी कुछ समय पहले हमने देखा हमारे मधुबन निवासी मधुरवाणी ग्रुप ने आप सबका बहुत सुंदर गीत के द्वारा स्वागत किया, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हर समय पर वो हमारा स्वागत करते, हमें मौका मिलता है हम भी उनका स्वागत करते हैं। साथ साथ जो नन्ही दो परिया, परी और ईश्वरिया, इन दोनों छोटी बच्चियों ने मेहनत करके हम सभी के सामने अपने भाव व्यक्त किए। उन्होंने अपने गीत में बड़ों के द्वारा अपने मन की भावनाएं आप सभी के स्वागत में प्रस्तुत की। उन दोनों बच्चियों को भी बहुत तहे दिल से उनका भी स्वागत है और दिल की दुआएं हैं। और साथ साथ आप सभी जो सभा में उपस्थित हैं, और आप सभी नहीं होते तो ये सभा शोभती नहीं थी, अधूरा होता था। और आप सभी ने निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप सभी अपने लिए एक बहुत जोरदार ताली बजाएंगे और आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है। और आप सबके लिए यही एक शुभ भावना है कि आप अभी आए हो, अगली बार आप अपने साथियों को लेकर के आएंगे और उन्हें भी अपने अनुभव से अनुभूति कराएंगे, ताकि उनके जीवन में भी ये ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन को मदद करेगा। साथ साथ हमारे स्टेज को कंडक्ट कर रहे हैं हमारे संजय भाई जी, उनके भी अथक प्रयास और अथक मेहनत इस कॉन्फ्रेंस के पीछे रहती है और आज उन्होंने ये संपूर्ण रूप देने में अपना भी सहयोग दिया हुआ है। तो हमारे संजय भाई जो मधुबन ज्ञान सरोवर निवासी हैं और आप सभी के लिए बहुत सेवाएं करते हैं, तो उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति।
सबका स्वागत करने वाली आदरणीय अलका दीदी का भी तो स्वागत होना चाहिए। बस इतनी और थोड़ा जोर से। तो हम आदरणीय अलका दीदी जी का भी सबकी तरफ से स्वागत करते हैं। स्वागत की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। भिन्न भिन्न रीतियों से आपका स्वागत किया गया, नृत्य के द्वारा, गीत के द्वारा, फूलों के द्वारा, शब्दों के द्वारा। वास्तव में हमें खुशी ही इतनी है आपके आने की कि हमारा दिल ही नहीं भरता आपका स्वागत करते करते। आप सब अपने घर में आए हैं, परमात्मा का घर सो हमारा घर भी और आपका घर भी। तो ऐसा नहीं कि आप मेहमान हैं, आप अपने घर में आए हैं और आपकी आने की हमें बहुत खुशी है। तो स्वागत की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है और यहाँ से हम चलते हैं हमारे परम आदरणीय अंबिका दीदी जी की ओर से, जो कि इस प्रभाग की चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, और आपकी ही सो प्रेरणा से वर्ष भर में हम अनेकों कार्यक्रम कर पाते हैं। आपकी यह हार्दिक इच्छा रहती है कि विज्ञान जगत के लोगों को राजयोग का महत्व समझाया जाए। राजयोग वास्तव में बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। राजयोग के महत्व को अगर हम थोड़ा भी समझते हैं और अपने जीवन में थोड़ा सा भी शामिल कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलता है, हमारा जीवन सुखमय होने लगता है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, एक सुखद जीवन का अनुभव होता है, परंतु इसका महत्व हम दुनिया को बताते हैं तो लोग समझते कम है। पर विज्ञान जगत के लोग अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने अनुभव से जब यही बात संसार के सामने रखते हैं, तो चूंकि इस जगत के लोगों पर लोगों की आस्था बहुत है तो लोग इस चीज को सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो दीदी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम विज्ञान जगत के लोगों को राज्यों की इम्पोर्टेंस बताएं, इसकी अनुभूति कराएं, ताकि अपने अनुभव से ये संसार को बता सके कि संसार को बदलने की ताकत इस राजयोग में है। तो हम अपने आदरणीय अंबिका दीदी जी को ग्रीटिंग्स प्रस्तुत करने के लिए आप सबके बीच आमंत्रित कर रहे हैं। दीदी एक बहुत ही कुशल वक्ता हैं और पिछले करीब 50 वर्षों से अपना जीवन इस यज्ञ में समर्पित किया हुआ है। आप साइंस ग्रेजुएट हैं और ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं रीजन वाइज, जोन वाइज बटे हुए हैं और एक बहुत बड़ा जोन है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को शामिल किए हुए, जिसको हम वीबीपुरम सब जोन कहते हैं। आप उसकी संचालिका हैं, जिसके अंदर 300 से भी ज्यादा, 350 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं। तो इतने बड़े जोन को संभालते हुए, स्पार्क विंग को संभालते हुए, दीदी का जो ये सतत प्रयास रहता है कि विज्ञान जगत के लोग संसार का भला कर सकते हैं, इसलिए इनको राज्यों का महत्व पहले समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी दीदी अंबिका जी को हम अनुरोध करते हैं कि अपनी ग्रीटिंग्स हम सबको जरूर दें।
ओम शांति, फिर से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। Means I am the peaceful energy who is radiating light and might. So we always wish each other, reminding that we are the inner beings, just not human being, but the inner being who is light and might. तो आज की जो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड इनोवेटिंग न्यूअर एवेन्यूज, तो आज की दुनिया को सामने रखते हुए अगर हम देखें कि दुनिया के हालत कहाँ तक पहुंच गए हैं, ऐसे देखा जाए अभी इट इज एन एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो क्लाइमैक्स पर जा रहे हैं उनके परिणाम स्वरूप जो भी दुनिया को पता नहीं था, हेल्थ के जगत में भी बहुत सारे योगदान है विज्ञान के, उनके संशोधन के, जहां हमें सारी बातें पता पड़ रहा है। दूसरी ओर देखा जाए अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस परफेक्टली फिजिकली मेंटली इमोशनली सोशली एंड इकोनॉमिकली हर रीति से परफेक्ट एग्जिस्टेंस चल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आप क्या कहेंगे? चल रहा है 100% परफेक्टली, द एग्जिस्टेंस परिपूर्ण है या खतरा है? खतरा है। तो सबका आवाज है ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर इतनी बड़ी खतरा मंडरा रहा है, तो उसका कारण क्या? जब सारी दुनिया इतनी आगे बढ़ चुका है और चंद्रमा मंगल अलग अलग ग्रहों तक जा रहे हैं, सब कुछ मालूम है, और यहां बैठ करके ग्रहों में रहने वाले को कंट्रोल भी कर रहे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा गंभीरता से सोचे कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर इतनी बड़ी खतरा क्यों है? हमारी एजुकेशन सिस्टम या कोई भी सिस्टम जो चल रहा है जीवन में, उसमें मिसिंग गैप क्या चीज है जिस कारण हम इतने बड़े खतरे से गुजर रहे हैं जो कोई भी बात का सर्टिनिटी है ही नहीं, अनसर्टिनिटी बढ़ता जा रहा है, हर लेवल पर बढ़ता जा रहा है, जो मेरे से ज्यादा आप सबको पता है। तो इसमें स्पष्ट बात है, हमारी सारी जो रिसर्च है, अप्रोच है जीवन में या प्रोफेशनली कहीं भी, वो सिर्फ एक दो एंगल पर ही चल रहा है जो फिजिकली या टोटली सोशली, थोड़ी बहुत मेंटली एंड थोड़ी बहुत एक इमोशनली। लेकिन सारी बातें जब तक हर तरीके से वो पूर्ण नहीं है तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर डेफिनेटली खतरा ही खतरा है, ये हम जानते हैं। क्योंकि इस दो मास के अंदर मैंने जितनों को भी मिला है तो उनों की जो दशा है वो बहुत दुखदायी है। इतनी पैनिक है, आई कैन से इट इज एन एज ऑफ पैनिक, इट इज एन एज ऑफ टेंशन, द प्रेशर्स एंड द स्ट्रेस, जिसमें मनुष्य संपूर्ण तरीके से टूट चुके हैं, इतने तक टूट चुके हैं जो कहते हैं जिंदा रहे हम अपने को खत्म करें। मैंने जितने भी लोगों से मिली हूं वो कहते हैं दीदी वी आर गोइंग डीप इनटू डिप्रेशन, क्योंकि जो भी कार्य है उसमें वी कांट फेस दोस चैलेंजेस, जिस कारण हम टूट चुके हैं। तो इसका एकमात्र सल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के प्रति हमारी जो कई भावनाएं जो है, जिस कारण हम सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी एक अलग ही फील्ड है और स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ने के कारण लोग कंफ्यूज्ड भी है, डरते भी है और ये पता नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज माय लाइफस्टाइल, इट इज पार्ट ऑफ माय लाइफ, पार्ट ऑफ माय डेली रूटीन। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी, मैं फिर से प्रश्न उठा रही हूं, आप जो कुछ भी प्रोफेशनली या कोई भी लेवल पर कुछ भी करते हो, किस लिए करते हो? दिन रात जो मेहनत चल रहा है किस लिए चल रहा है? सिर्फ सबका उत्तर है कि हम सुख में शांति में जीवन बिताना चाहते हैं निश्चिंतता से। लेकिन वो मिल रहा है जब हम पूछते हैं तो कहते हैं जितना चाहिए उतना होता नहीं है, और जो सक्सेस देखना चाहिए वो नहीं होता, जिस कारण हमारे अंदर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो जिस कारण मना, ये जो भी कारण है, लेकिन इन सारी कारण होते हुए भी हम अपने को अंदर एक सुख शांति, एक स्टेबिलिटी, एक सामना करने की जो ताकत है वो हम हमारे अंदर रखे, उसके लिए एक ही उत्तर है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट शिफ्टिंग माई कॉन्शियसनेस टू दी Eternal Self, where I am to my inner world to research myself, that what am I? What are my powers and how to channelize those powers professionally and to my personal life and outside? The challenges, whatever we see in whichever field you are, whether it is in the research field or you are a doctor or anybody, but still we have a challenges in life. And spirituality is nothing but going deep into my own inner world, where I can find myself with deep silence and come out with a new inventions and innovations, where we have a new output in my personal life and in the professional life, which will be the beneficial not only to personally or not to the one organization, but that will be, those innovations or inventions will be so useful that will be globally the beneficial things will come out. So spirituality is a big science and it is a vast subject where spirituality part of it is the Raja Yoga meditation, which is being guided. Who can guide? Who can give the spiritual knowledge? The spirituality can be given only by the spiritual father, who is the master, the owner of the knowledge, the ocean of knowledge, that is our supreme father, supreme parent. Scientific language they use, that is the supreme consciousness, which is beyond of everything. Beyond all the physical limits, so that only he can bestow all the powers, because that is the scientific mind who has created such a beautiful world where everything is possible. And beautifully you see even the human life, human body, which is being planned and created, that cannot be repaired correctly by anybody. There will be something gap, some gap where that will be disturbing us after even doing so many things. So I say buddhi, buddhivanon ki buddhi, jo itni perfect, wo perfect hone ke karan, perfect conscious, supreme conscious hone ke karan, wo jo supreme knowledge, spirituality jo de raha hai, jisme hum apne ko khoj rahe hai, apne ko ek navikaran, the divinization of the human intellect and renovation of the human mind and intellect, jo spirituality dwara hota hai, jiske aadhar se hum log ek naye roop mein hamari har kadam ko ek perfectly, ek alaukikata se hum rakh sakte hai, jisme aapka har presence अपने घर में हो या प्रोफेशनली आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हो, वहां आप द्वारा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड विद ऑल द डिवाइन विजडम एंड द एनर्जी पीपल विल बी बेनिफिटेड बाय योर प्रेजेंस. इसमें मैं एक उदाहरण देते हुए मैं अपना भाषण एंड करना चाहती हूँ. हमारी जो दादी थे वो इस चीफ द प्रकाशमणि दादी, आर जानकी दादी और अवर गुलजार दादी, हुअर वर नॉट हियर वेर अलकाबेन वॉज रिमेम्बरिंग, उनकी बात में कहते हुए, हम लोगों को जीवन में इतने करीब 60,000 बहने मेरे जैसे, जो इतना उन्होंने जो आगे बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, ऐसे नहीं गलतियां होता नहीं था, लेकिन हर कदम में वो प्यार से, एक शांति से, एक सद्भावना से, सिर्फ कहते नहीं थे, जो कहते थे उसके साथ वो एनर्जी भी देते थे, क्योंकि उनके अंदर राजयोग का जो बल है, मेडिटेशन की जो एनर्जी है, द लाइट एंड माइट, साथ साथ देते हुए कोई कैसे भी हो उनको चलाया. तो माना ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चैलेंजेस जिस द्वारा भी आता है, कुछ भी होता है, लेकिन खतरा इसलिए है बिकॉज द ह्यूमन माइंड, द इमोशनली एंड द मेंटल वाइब्रेशन, द क्लैशेस आर देयर वेयर पीस इज नॉट अवेलेबल, पीस इज गॉन टू पीसेस. जिस कारण अभी जो भी इन्वेंशंस है, पॉजिटिव साइड हम देखे बहुत अच्छा, द अदर साइड देखे तो वहां ह्यूमन एग्जिस्टेंस की खतरा है. इसलिए मैं आप सबको निवेदन भी करती हूँ, वी आर कॉलिंग अपॉन ऑल द रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट टू गो डीप. दीज 3 days प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम इन सच ए वे दैट यू फाइंड यूअर सेल्फ पर्सनली द डिफरेंट वर्ल्ड विद इन, विच इज द रिचेस्ट वर्ल्ड वेयर यू कैन बी द रिचेस्ट विद ऑल द पावर्स एंड द विजडम, सो दैट यू कैन बी beneficial to the whole earth, I can say the whole world, and save the humanity, save their existence, because humanity goes
then the other, the whole nature, five elements, the whole other species, everything will vanish. So only, this is the thing where we have to think. Itne gambhirata se aap soche, aur iska solution dhoonde, aur iske aadhar se sabko bachaye. Om Shanti.
आज के जो कॉन्फ्रेंस की ये जो तीन दिनों तक कॉन्फ्रेंस चलने वाली है उसके थीम को बहुत सुंदर रीति दीदी ने समराइज किया. थीम बड़ा सुंदर है, स्पिरिचुअलिटी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस. मानव अस्तित्व के लिए अध्यात्म कितना महत्वपूर्ण है उसको भिन्न भिन्न रीति दीदी ने हमें समझाने की कोशिश की. ह्यूमन एग्जिस्ट तो कर रहा है पर उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं रह गई है, उसकी ह्यूमैनिटी खत्म होती जा रही है. कारण ही है कि स्पिरिचुअलिटी को हम खोते जा रहे हैं, अपने जीवन से उसको निकालते जा रहे हैं. साधनों की इस दुनिया में हम इतना ज्यादा साधनों में लिप्त होते जा रहे हैं कि अध्यात्म को हम महत्व ही नहीं देते. और यही कारण है कि ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है वो कहीं ना कहीं मरती जा रही है. और वही हमारे जीवन का भी और समाज के जीवन का के भी दुख का कारण बनता जा रहा है. तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंबिका दीदी जी, एक बार जोरदार ताली से हम दीदी का धन्यवाद करते हैं. परंतु अध्यात्म को जीवन में शामिल करने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है और उसी को समझाने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है. अगले तीन दिनों में अपने प्रवास के दौरान आप मेडिटेशन को बहुत अच्छी तरह थ्योरेटिकली भी जानेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे. और हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ से जाएं तो अपने साथ एक बहुत सुंदर, अपने जीवन के लिए एक बहुत अमूल्य सौगात लेकर के जाएं तो ये आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और हम दूसरों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे. अभी इसके बीच हमारे बीच आ रही हैं आज के इस सत्र की जो चीफ गेस्ट हैं, डॉक्टर कामाक्षी अय्यर जी. हाँ, जोरदार, थोड़ा जोर से ताली बजाएं, आप लोग डर डर के क्यों बजा रहे हैं. तो अभी हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कामाक्षी अय्यर जी का. आप मुंबई से हैं, आप यूनिवर्सल स्किल टेक यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर हैं, साथ ही साथ एकेडमिक्स एंड डॉक्टोरल स्टडीज यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी मुंबई की आप डीन भी हैं. आप करीब पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से आपको एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग का अनुभव है और आपने वेब सर्विसेज सिक्योरिटी में PhD की हुई है. बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में आपने भाग लिया है, अपने पेपर भी प्रेजेंट किए हैं, आपके बहुत सारे पब्लिकेशंस, मोर देन 80 पब्लिकेशंस भी हैं एंड यू हैव आल्सो वर्क्ड एज को-ऑथर इन 7 बुक्स. तो इस तरह की महान महान विभूतियां हमारे बीच आज आई हुई हैं. तो हम आज का जो चीफ गेस्ट स्पीच के लिए हम स्टेज पर बुलाते हैं, सॉरी पोडियम पर बुलाते हैं आदरणीय कामाक्षी अय्यर जी को.
Thank you so much, sir, for the introduction. Good evening, one and all. And it's a great privilege for me to be here amid of all these blessed souls and the spiritual headquarters today. It's really a blessed feeling for me. For that, I would like to convey my sincere thanks to Srikant Bhai and the Spark Wing for giving us this opportunity to be present here. मैं तो ये तीन दिन सिर्फ सुनने के लिए आई थी because I wanted to hear from all the didis as much as possible. I wanted to listen to them, so I kept all my academics there in Mumbai. I came here to get the spiritual knowledge and this meditation process, but unfortunately Alka Behn ne मुझे भाषण देने बोले. In front of them I am nothing. So I will give our experience. हमारे यूनिवर्सिटी में हम ब्रह्मा कुमारी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ. दीदी भी अभी यही बताए, अपना एजुकेशन सिस्टम में समथिंग इज मिसिंग. That's what she was mentioning. That something is nothing but the value system. We are running a race. What we are preparing our students for? Jabhi hum college education mein hai, jabhi andar aate hai, pehle question parents ka kya rehta hai? Iske baad kya job milega? Kab milega? Abhi to andar aaye hai students. Uske pehle they are running a race. Okay, see, hamara education system jo hai, from the beginning, there is a boundary. Hai na? Abhi, up to third standard, unko all writing practice, everything, they should have the tables. See, we are not having an innovative teaching mechanism. So, unko monotonous way mein hi padhaya jata hai. When they are moving on to 8th and 9th standard, that all other exams are coming into picture, aapko ye competitive exam dena hai, wo competitive exam dena hai, to wo pressurized environment mein hi bade huye hai. Parents bhi wohi bolte hai, class mein bhi wohi pressure hai, to unko jo inner feeling hota hai, andar unke upar some kind of a talent hota hai, usko koi identify nahi karte. Apna education system jo hai, wo identify karne ka mauka hi nahi deta hai. Abhi apna government ne pehle step kadam liya hai, that is NEP, National Education Policy. Usme thoda bahut percentage, they understood from day one, thoda bahut humko value-based education. Uske liye thoda bahut value, courses humko nikalna hai. Aur IKS, Indian Knowledge System. So apna jo itihas, apna culture, if you look into the Gurukul system says that the person should be staying in the Gurukul and he has to do everything by himself. And it's not only education, it is all about the life skill. Am I right? He has to bring the water, apna kapda apne ko dona hai. Am I right? Wo raja ka bhi beta hoga, ya unke niche wala bachcha bhi hoga, sab ek saman padhai karte hai. Apna jo related area hai, raja hai to unko other, war related bhi padhaya jata hai. Uske alawa baki life skills bhi badhaya jata tha. But we have forgotten that entire system now. So that's why I am working in a skill tech university. This is a new concept. So we say, old wine in a new bottle kind. So this is something they say that the same concept. But now everybody achanak se bolne lage ki skill, skill, skill. Hum padhai ke bare mein dhyan nahi dete hai, skill ke bare mein dhyan dete hai. Wo kuch nahi hai. Purana itihas mein jo follow kiya jata hai. So that is why it is very, very important for us to get attached to our culture. Okay, attached to our, whatever our old people have mentioned. Recently my son was talking about, he is preparing for his MBA exams. He was telling, I need to purchase a book called Atomic Habits. Many of you must be knowing. Atomic Habits is a very, very famous book, best-selling book. Uska actual content kya hai, boliye? Atomic Habit kya hota hai? Atomic means autumn. What is that? Small things makes a big difference. मेरे दादाजी या मेरे पापा मम्मी एक ही वर्ड बोलते थे, डेली आके थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो. आज हुआ आधा घंटा एक जगह पे बैठना सीखो, एक आधा घंटा बुक खोल के बैठना है. तो थोड़ा 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 पढ़ाई करेंगे एग्जाम के टाइम पे, अपने आप वो क्यूमुलेटिव होके निकलता है. वो ही एटॉमिक हैबिट्स है. उसी को ही वो लोग कमर्शियल वे में बताते हैं और लोग उसको लेके पढ़ते हैं. यही दादाजी या हम लोग बोलेंगे अपने ही बच्चों को, डेली पढ़ाई करो, एग्जाम के टाइम देख लेते हैं. सो एवरीथिंग क्विक फॉर आवर करंट जनरेशन, एवरीथिंग इज क्विक. मेरे को 15 दिन में पढ़ाई करके 80% मिल रहे, तो मैं डेली क्यों पढ़ाई करूं? एम आई राइट? सो बाकी दिन में दे आर इनटू, सो दैट्स व्हाई जो हम बोले आधा घंटा एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करना, इज नॉट ओनली फॉर द नॉलेज डेवलपमेंट, इट इज अबाउट सिटिंग इन अ प्लेस. आप अपने कोई भी बच्चों को आजकल बोल सकते हैं क्या, 15 मिनट एक जगह पे आंख बंद करके बैठ जाओ? 15 मिनट बहुत बड़ी बात है. 5 मिनट बैठने बोलिए, नहीं हो सकता है. सो दिस एटॉमिक हैबिट्स इज नथिंग बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड. इट कैन नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू आर गोइंग टू यूजी आर पीजी. इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड. सो यू हैव टू नर्चर दिस कल्चर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द एलिमेंट्री लेवल. दैट इज वॉट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा बहुत कोशिश करता है हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम देना है. So I am giving an example about our university. It is in a rural belt. So it is, surrounded by the people who are in underprivileged families. The children are coming from underprivileged family. वी आर हैविंग मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम. सो हमारे जो बच्चे आते हैं वो 42 मैक्स टू मैक्स 55% के 45 टू 60 के बीच में आते हैं. तो उनको पेरेंट्स का क्या है, फर्स्ट जनरेशन हु इज गोइंग टू बिकम अ ग्रेजुएट. सो दे आर द फर्स्ट जनरेशन पीपल. सो पेरेंट्स आर हैविंग लॉट ऑफ एस्पिरेशन. ओके, दे आर स्ट्रगलिंग टू ब्रिंग देम अप. एंड चिल्ड्रन आर कमिंग टू इंजीनियरिंग प्रोग्राम. वॉट दे आर गोइंग टू स्टडी AIML. उनके माँ बाप को पता भी नहीं है. हाफ ऑफ द पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड एंड दे आर यू नो वर्किंग इन अ वेरी लो लेवल यू नो जॉब्स एंड दे वॉन्ट टू गिव गुड एजुकेशन. इट्स नॉट दैट 40 to 60 मीन्स दे आर नॉट गुड इन एजुकेशन. दे डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ अ प्रिविलेज. ओके, सो वेन दे केम टू आर ऑर्गेनाइजेशन, सो फॉर्चुनेटली आई शुड बी थैंकफुल टू अलका दीदी फॉर दैट. She has taken that initiative, and Nagreji and Bharti Ben. So they have come to our organization, and through our mentor, Dr. V.B. Kole, who is a former Vice Chancellor of Mumbai University, he is my mentor. So when they met him, so he told that अभी एक university बन रही है, skill based university है, आप उधर जाके बात कीजिए. So they came with a proposal that why don't we include this as a part of your curriculum? So we immediately signed an MOU and we started with their courses. You won't believe, the first induction program hum jab hi kiye apne students ke liye, sab log attend kiye wo sessions, everybody attended, and the feedback you should see that 5 out of 5 in all sessions. And thanks to all of them that you know they have brought in the resource person from various places. If you see, they are Citibank retired person, like you know these kind of resource person, aram se you will not be able to get it. So hum dhoondne jayenge, aise log aapko easily nahi milenge. Aur simple humble people. This is not only, see, what you preach you have to practice. Am I right? Otherwise always we say, we tell many things to our kids, but are we following? You have to live by example. Am I right? So that is what they are doing. They came to our organization. Today successfully 1.5 years they are associated with us, and it is not that once in a while that you know one session or one day session or 2 day session we are doing. It's embedded in our curriculum itself with 2 credits. So they come every week and they give some kind of a you know module to our students, and they are very happy about it. So hum log kya vision for human society and mindfulness. See, unke andar bhi ek trauma hai. पेरेंट्स ने कुछ बोला है, इधर टीचर्स तो पढ़ाते हैं, ऑल टीचर्स आर नो वी आर ऑल्सो हैविंग प्रोफेसर फ्रॉम IIT एंड अदर थिंग्स. तो जो पढ़ाते हैं वो नहीं जाता है अंदर, क्योंकि वो लेवल पे जाना चाहिए, एंड दे वॉन्ट टू अचीव ऑल्सो बिकॉज देर इज अ प्रेशर फ्रॉम बिहाइंड. सो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रोमा. आई मीन राइट, सो उनको कैसे हम हेल्प करें. सो दे आर डूइंग एंड आर दीदीज आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब ओवर देर. एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट द राजयोगा सेंटर, दैट इज अ I think thought lab. Am I right? So that is, the process is underway. That you know, we are again mentored from the Jaipur Institute, where they are having the big Rajyoga Center thought lab. We are also going to establish that in our university, and we are also training. I should be thankful to Girish Bhai, and we were colleagues, me and Girish Bhai. So he came to, he is very busy, but still he agreed. He took a 2 day session to our faculties. It's not only the students require this, the faculties are the base. Am I right? What they give, then only it will be reaching. So three sessions are DDs are taking, but after that even the faculty should, they are also going through a lot of trauma. When we are talking about the research, this is another topic which we can talk for hours. Like you know, whenever we do the PhD, our candidates, we say it should be for the social cause. That is unwritten rule. I mean, right? No need to emphasize on that. So whenever you attend any of the PhD induction programs, orientation program, what do they say? What our government says, what our UGC says, everybody says one line. That is the research for societal value. But हम उसको इतना ध्यान से नहीं देते हैं, लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे promotion के लिए research करते हैं, हमारे increment के लिए research करते हैं. हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कितने लोग रिसर्च करते हैं? जब भी आपका सेटिस्फेक्शन के लिए आप रिसर्च करोगे, अपने आप वो सोसाइटी का वैल्यू बनी जाएगा. जब भी प्रेशर लेके करते हैं, आई एम टेलिंग माय स्टोरी दैट व्हेन आई डिड इन 2006 व्हेन आई रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी, मेरे इंस्टीट्यूट में बताया गया वो पीएचडी करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप नेट सेट क्लियर करो अब आगे बढ़ेंगे. पर मैं बोली मुझे इंटरेस्ट है तो आपको कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए, मैं खुद के पैकेट से डाल के करते हैं क्योंकि दैट इज माय फोर्थ, आई लाइक टू डू दैट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. बट आफ्टर दैट द लाइफ चेंज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. दैट पीएचडी हैज क्रिएटेड मच वैल्यू बट आई डिड फ्रॉम द हार्ट. आई नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू गिव मी एनी वैल्यू बट यू नो टूडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज आई डिड फ्रॉम द हार्ट. सो दैट्स व्हाट आई टेल इवन द रिसर्च स्कॉलर्स. When you do from the heart, automatically it will be that's a positive vibe which is getting created. Am I right? More than anything, the positive vibe which is getting created, that is good for the society. That itself is good for the society. First step. Forget about your outcome, your results, how it is going to benefit the society is secondary. But when I feel I'm doing with wholeheartedly, I'm doing for my satisfaction. Okay, so the area I'm choosing which is, you know, I'm not, the guide is not selecting my topic. I'm selecting, accordingly I'm selecting the guide. So these all things are happening. You are creating a positive ambience. Okay, so this is how you can deliver a very good result for the society. So with this, I don't want to take much of a time because it can go on and on. But you know, I would like to listen from all others because they are the great speakers. So only underlining message what I would like to say is that, instead of talking about the problem, start acting towards that. So we have taken one small step that we have set up an MOU and step by step we are moving ahead thanks to all the Didis, Bharati Didi is giving. Today we have finalized one conference in our campus that, you know, we are going to invite the people. So step by step we are moving ahead. So if you take one step ahead, people will come towards you and together we can achieve whatever we are planning to. That's what my message. Thank you for the opportunity.
Thank you so much, Sister Dr. Kamakshi Iyer ji. बहुत ही सुंदर बात आपने बताई कि जीवन में स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है और सारे स्कूल्स हमारे स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते हैं. बहुत सारे स्किल्स जो है हमें अपने बड़ों से सीखने को मिलते हैं, हमारे माता पिता से, हमारे जो बाप दादा हैं, नाना नानी हैं, उनसे सीखने को मिलते हैं. और डेफिनेटली जीवन को अगर अच्छी रीति चलाना है तो उनसे ये स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है. इफ यू वांट टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ भारत, डेफिनेटली वी नीड टू गो बैक टू प्राचीन भारत. हमें पीछे मुड़ना ही होगा. हम बहुत आगे निकल आए हैं, अब जरूरत है थोड़ा हम पीछे मुड़े, हम अपने बड़े बुजुर्गों के महत्व को समझें, क्योंकि जीवन के अनुभव से जो वो कुछ हमें सिखा जाते हैं दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में वो हमें सीखने को नहीं मिलता है. और ये स्किल्स हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है. हम बहुत सुंदर सुंदर वक्ताओं को, बहुत प्रबुद्ध वक्ताओं को सुन रहे हैं और जैसा कि कामाक्षी जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें हम अपने बड़ों से सीखते हैं, तो थोड़े समय से स्पीच सुन सुन करके हमारे जो बड़े बड़े वक्ता हैं उनसे स्पीच सुन सुन करके हमारे बीच एक नन्ही बच्ची है, 9 साल की एक कुमारी है आराध्या, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर से आई है. उसके मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी एक छोटा सा 2-3 मिनट का स्पीच करूं. तो ये कुमारी आराध्या ब्रह्मा बाबा, जो कि इस संस्था के फाउंडिंग फादर हैं, दादा लेखराज जिनका लौकिक नाम हम उन्हें प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनकी जीवनी के बारे में एक 3 मिनट का एक छोटा सा स्पीच लेकर के हमारे बीच आ रही है उड़ीसा भुवनेश्वर से कुमारी आराध्या.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. रेस्पेक्टेड दीदी जी, respected brothers and sisters and all my dear elders sitting here. Today I feel very lucky that I have got a chance to speak about Brahma Baba. My name is B.K. Aradhya. I am studying in Standard 4. Today I am feeling great happiness to share about the life of the great soul, Brahma Baba. Brahma Baba's childhood name was Lekraj Kriplani. He was instrumental in founding the Brahma Kumaris organization in 1937. He was a wealthy businessman from Hyderabad, Sindh, now in Pakistan, who had a divine vision of incorporeal God Shiv Baba in 1936. After that, he left his business and founded a spiritual organization, which was later known as Om Mandali. He is also known as Prajapita Brahma and is fondly called Brahma Baba. Dada Lekraj was born on December 15, 1876 in Hyderabad, Sindh. His father was a schoolmaster. His father was a schoolmaster and our beloved Dada Lekraj lost his mother in his childhood. He traded in diamonds and became a famous businessman of Calcutta, whose business expanded to Mumbai. He was highly respected in his community. At the age of about 60, he had a divine vision of incorporeal God Shiva, which gave a new turn to his life. He invested all his wealth in establishing the school named Om Mandali in 1937. There, deep study of spiritual knowledge was undertaken. After the partition of India-Pakistan, this institute shifted to Mount Abu, India, and became a famous as Prajapita Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya. This institute inspires to practice Raj Yoga meditation, bring about world transformation through self-transformation and promote world peace. On 18th January 1969, Brahma Baba left his physical body. This huge spiritual institution established by him is now a source of inspiration for millions of people around the world. Om Shanti. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी आराध्या. ये 9 साल की बच्ची प्रतिदिन अपने माता पिता के साथ राजयोग केंद्र पर जाती है और नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करती है और बहुत सारे स्टेज शोज में पार्टिसिपेट भी करती है. तो आप सबको देख करके इस बच्ची में भी उमंग आया और कितना सुंदर ब्रह्मा बाबा के जीवनी पर इस बच्ची ने एक उत्साहवर्धक स्पीच दिया. हम सब की दुआएं हैं कि ये बच्ची आगे चल करके समाज को एक नया रास्ता दिखाए. अभी हमारे बीच हमारी परम आदरणीय प्रभा दीदी जी विराजमान हैं. हम सबका सौभाग्य है कि प्रथम दिन ही आपके दर्शन हो रहे हैं. हम सबके अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर दीदी जी हम सबके अनुरोध पर आज प्रथम दिन ही हमारे बीच आ गई हैं. हमें बहुत खुशी है. हम दीदी का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि दीदी ने पहले दिन ही अपना दर्शन दिया. दीदी वर्तमान में ये जो कॉम्प्लेक्स है ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स, इसकी डायरेक्टर है और आप भरूच सब जोन, एक सब जोन है हमारी सेवाओं को, जैसा मैंने बताया कि सब जोन में बांटा गया है, तो दीदी वहां की भी डायरेक्टर है. और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं जब बहुत फैली हुई नहीं थी, अभी उसकी सेवाओं का विस्तार हो ही रहा था, मुझे लगता है 90 के आसपास, तब ज्ञान सरोवर जैसा ही एक कॉम्प्लेक्स दीदी ने भरूच में बनाया, वो हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का, मेरी जहां तक जानकारी है दीदी, वो पहला कॉम्प्लेक्स है. वो पहला कॉम्प्लेक्स, तो दीदी के लिए एक जोरदार ताली तो बनता ही है. दीदी 13 साल की अल्पायु में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आ गई थी और आपकी खुशनसीबी है कि ब्रह्मा बाबा जो कि इस संस्था के संस्थापक है, उनके होते हुए आपने ये ज्ञान प्राप्त किया, उनका दर्शन आपको मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, उनसे पालना आपको मिली और पिछले करीब 60 वर्षों से समर्पित रूप से आप जो है अपनी सेवाएं इस संसार को दे रही हैं। आप जैसे ये स्पार्क विंग है, ऐसे ही हमारा एक प्रभाग है एजुकेशन विंग के नाम से, आप उसके भी गुजरात स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। तो ऐसी दीदी के लिए हम जितना भी दिल से उद्गार व्यक्त करें कम है। हम दीदी से चाहेंगे कि आज के इस पावन अवसर पर इस दिव्य सभा में आप हम अपनी ब्लेसिंग्स हम सबको जरूर दें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर है, उस पिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतान है आज इस पार्क विंग के इस प्रोग्राम में आप सभी विशेष पधारे हैं। साथ साथ आज के इस प्रोग्राम के मंच पर विराजमान सभी महान विभूतियां, हम सुन रहे थे कि विशेष एजुकेशन, जो एजुकेशन हम सबके जीवन को बनाने वाली है, परमपिता परमात्मा ने भी स्वयं इस धरा पर आकर के ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को, जैसे कोई भी विद्यालय आदि होता है, वहाँ पर अनेक प्रकार की डिग्रियाँ दी जाती हैं, इसी प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो डिग्री है वो बहुत श्रेष्ठ और ऊंची डिग्री है। वो डिग्री है कि परमपिता परमात्मा मनुष्य से देवता बनाता है। मनुष्य से देवता बनाने की और बनने की डिग्री कोई भी विद्यालय में दी जाती है, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ का लक्ष्य जो है वो यही है कि मनुष्य से देवता बनना है। क्योंकि क्यों देवता बनना है? क्योंकि देवताई जीवन जो है वो सुखमय जीवन होता है, श्रेष्ठ जीवन होता है। और हरेक व्यक्ति आज हम देखते हैं कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं कि हमारा जीवन जो हम सबको ये अमूल्य मिला है, इस अमूल्य जीवन को हम श्रेष्ठ बनाएं। और श्रेष्ठ बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हरेक व्यक्ति प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जो आज मनुष्य अपने जीवन के अंदर सुख चाहता है, शांति चाहता है, जीवन वैल्यूफुल बनाना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं जो हमारा श्रेष्ठ जीवन वैल्यूफुल था, आज का जीवन हरेक का क्या बन गया है? हरेक देखते हैं चारों तरफ दुख है, अशांति है, परेशानी है, टेंशन है, फिकर है, चिंता है, इसमें ही मनुष्य जी रहा है। तो इन सब से परे, अशांति से परे, दुख से परे, चिंताओं से परे, टेंशन से परे कैसे रहे और अपना जीवन हम कैसे श्रेष्ठ बनाएं? तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कला स्वयं भगवान आकर के सिखाते हैं। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर यही बताया जाता है कि जीवन को हमें कैसे श्रेष्ठ बनाना है। आज हम सब चाहते हैं जीवन श्रेष्ठ बने, परिवार श्रेष्ठ बने, समाज श्रेष्ठ बने, देश श्रेष्ठ बने, तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो वास्तव में जितना प्रयत्न है उतना ही मनुष्य जीवन में असफल होता जा रहा है। जैसे कहते हैं, ज्यों ज्यों दवा बढ़ती गई त्यों त्यों रोग भी बढ़ते गए। ऐसे ही मनुष्य प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्नों में जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती है। सफलता न मिलने का जो कारण ही है वो परमपिता परमात्मा ने हम सब आत्माओं को बताया है कि सफलता किसको चाहिए। तो सफल जीवन किसका होना चाहिए, सफलता किसको चाहिए? स्वयं को सफल बनाना है तो स्वयं को सफल बनाने के लिए स्वयं की पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो अपने जीवन के लक्ष्य को जब हम सामने रखते हैं तो जैसे कहते हैं, लक्ष्य सामने है तो लक्षण जरूर आएंगे। अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं होगा तो हमारे जीवन के अंदर वो लक्ष्य लक्षण नहीं आएंगे। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखना है। परमात्मा ने हम सबको यही लक्ष्य दिया कि आप अपने जीवन को देव समान बनाओ, और देव समान लक्ष्य रख कर के अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो लक्षण आते जाएंगे। उन लक्षणों को कैसे धारण करना है, जिनको हम वैल्यूज कहते हैं, तो वैल्यूज को कैसे जीवन में लाया जाए, तो यहाँ पर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर यही बताया जाता है कि जो हमारे जीवन से वैल्यूज खत्म हो गई हैं, गुण खत्म हो गए हैं, उन गुणों को, उन वैल्यूज को हमें अपने जीवन में धारण करना है। और कैसे धारण करना है उसके लिए यहाँ ये राजयोग सिखाया जाता है, जिसके आधार से हम अपने जीवन के अंदर उन वैल्यूज को ला सकते हैं। राजयोग ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के आधार से हम कोई भी असंभव कार्य को भी हम संभव कर सकते हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं को ये राजयोग सिखाकर हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो हमें अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ वैल्यूबुल बनाना है। आप सभी विशेष यहाँ ज्ञान सरोवर में अपना समय निकाल करके आए हैं, है? तो इस ज्ञान सरोवर के परिसर में आते ही आप सभी विशेष अपने जीवन में ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि ये ज्ञान सरोवर एक नया सरोवर है, अर्थात नया परिसर है। यहाँ का वातावरण आपको वैसे भी खींच रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ के वातावरण में शांति है, सुख है। तो ये शांति और सुख देने वाला वो परमपिता परमात्मा है जिसने ये सरोवर बनाया। वैसे भी कहते हैं कि सरोवर में डुबकी लगाने से, मान सरोवर में डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। तो आप सभी यहाँ ज्ञान सरोवर में आए हैं, इस सरोवर में जितनी गहराई में जाकर के इस इन बातों को समझेंगे उतना ही आपके जीवन के लिए बहुत बहुत अधिक वैल्यू रहेगी। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ 3 दिन यहाँ रह करके अपने जीवन को ऐसा भरपूर बना करके जाएं, क्योंकि परमात्मा जो है वो भरपूर करने वाला है। परमात्मा के लिए कहा जाता है वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो सागर के अंदर जितनी उसकी गहराई में जाएंगे उतने ही रतन मिलेंगे। तो ऐसे ही आप सभी यहाँ विशेष इस ज्ञान के सागर में आए हैं, जितनी आप गहराई में जाएंगे उतना ही आप विशेष अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करके जाएंगे। यही इन शुभ आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत वेलकम भी करती हूँ, और यही आशा रखती हूँ कि आप यहाँ से भरपूर होकर के जाएं। आप भगवान के घर में आए हैं और भगवान के घर से आप भरपूर होकर के जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोग एक शब्द बार बार सुन रहे हैं राजयोग, राजयोग मेडिटेशन, ब्रह्म कुमारी जो योग हमें सिखाता है उसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। ब्रह्म कुमारी की सेवाओं के दो साधन हैं, एक ज्ञान जो हमें ये सिखाता है कि जीवन जीना कैसे है, जीवन जीने के लिए किन किन मूल्यों की आवश्यकता है, और दूसरा है राजयोग। राजयोग उन मूल्यों को, उन शिक्षाओं को जीवन में धारण कराने के लिए हमारे अंदर शक्ति जनरेट करता है। कोई भी मूल्य केवल सोचने से, केवल चर्चा करने से जीवन में उतरता नहीं है। जिन चीजों की चर्चा यहां हो रही है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको आत्मसात करने का बल जो देता है वो है राजयोग मेडिटेशन। हम बीच बीच में इसका भी स्वाद लेंगे, उसको भी टेस्ट करेंगे, उसकी रूहानी यात्रा पर भी हम चलेंगे। बहुत देर से आप सब ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, अभी हम चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी करें कि ये राजयोग क्या है और कितना सुखदायी है और हमारे जीवन के लिए कितना आनंदकारी है। तो उसके लिए हम आह्वान कर रहे हैं सरोज दीदी जी का। दीदी जी आए और हमें एक सुंदर रूहानी यात्रा पर लेकर के चले। आदरणीय सरोज दीदी जी दिल्ली से हैं और आप दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इस पार्क के जो भी स्थान है उसके जोनल कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर हैं। साथ में दिल्ली में जो वसंत कुंज द्वारिका है और आसपास के जितने भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं उसके भी आप डायरेक्टर हैं। और दीदी बहुत ही छोटी उम्र में ज्ञान में आ गए थे, करीब 57 ईयर्स आपको हो गए हैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, और आप बहुत ही एक कुशल वक्ता हैं और अपनी स्पीच के लिए ब्रह्मा कुमारीज में जाने जाते हैं। देश विदेश आप इसके लिए भ्रमण करते हैं और एक ब्रह्मा कुमारीज का सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स है जो दीदी बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबको कराते हैं। तो एक रूहानी सैर पर हम सबको लेकर के चलेंगी हमारी आदरणीय सरोज दीदी जी।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित भारत के अनेक क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे अनुभवी वैज्ञानिक जगत के भाई एवं बहनों, मुझे कहा गया है कि मैं थोड़ा सा आपको मेडिटेशन का रस आस्वादन कराऊं, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस सुरक्षित तभी महसूस होगा जब हम स्वयं को सकारात्मक चिंतन की ओर ले चलेंगे। तो अध्यात्म में वो शक्ति है जो हमें हमारे अंतर जगत की यात्रा कराता है, हमें सह अस्तित्व की पहचान देता है और स्वयं स्वयं का असली पिता और स्वयं का घर कहाँ है। तो चले थोड़ी देर के लिए उस यात्रा पर। सीधा होकर बैठेंगे, तन से रिलैक्स हो जाए, अपने ध्यान को मस्तक के बीच त्रिकुटी पर केंद्रित करें। विजुअलाइज करें आपके मस्तक में एक दिव्य सितारा चमक रहा है। वो चैतन्य शक्ति मैं आत्मा, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। इन सर्व कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार इन पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। मेरा मन केवल सकारात्मक और शक्तिशाली सोचता है, कम सोचता है। I think positive, I think less. मेरा मुख धीरे बोलता है, कम बोलता है और मीठा बोलता है। I speak less, I speak sweetly and softly. मेरा हर कर्म प्रेरणादायी है। मेरे संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं मेरे बोल और कर्म से उन्हें शुभ भावना कल्याण की भावना और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्रिया परमपिता परमात्मा आपका। मैं आत्मा आपसे स्वयं का परिचय प्राप्त कर धन्य हो गई हूं। आपने मुझे ज्ञान दिया, मैं आपकी संतान आपकी ही तरह मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैंने परमात्मा को अपना साथी बना लिया है। मेरी हर सोच हर बोल और हर कर्म से पहले मैं आपसे गाइडेंस लेती हूं। आपके द्वारा प्राप्त हुई दिव्य बुद्धि जिसने समय पर सही निर्णय करना सिखाया, आई बिकम अ डिवाइन एंजल। मैं भगवान का फरिश्ता हूं। मेरे अंदर अपने संबंधों के प्रति, बहुत ही शुभ भावनाएं मेरे संबंध पारिवारिक स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सबसे बहुत बहुत मधुर हैं। सब मेरे अपने हैं, मैं सबका हूं। अध्यात्म ने मुझे जीवन का नया आयाम दिया, नई सोच दी, नया आचार, नया विचार, नया व्यवहार, सब कुछ नया। मैंने पुरानी बातों को लेट गो किया है, अपने मूल गुणों को लेकर, मानवीय गुण को उजागर किया। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में शांत स्वरूप हूं, महसूस करें शांति सागर के सानिध्य में। शांति की शक्ति को स्वयं में प्रवाहित होता अनुभव करें। मैं शांति का फरिश्ता अपने चारों ओर शांति और शक्ति के प्रकंपन फैला रहा हूं। प्रकृति मेरी सहयोगी बन गई है। संपूर्ण वातावरण, पर्यावरण शांत, सुखदायी, प्रेम से परिपूर्ण है। अब मेरा अस्तित्व सुरक्षित है। परमात्मा की शक्तियों का कवच, सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मेरे परिवार के चारों तरफ है। यूनिवर्स के चारों तरफ है। कहीं भी जाएं, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह संपूर्ण सुरक्षित। वासिसी एंजलिक स्टेज में विचरण करते हुए चहोर ये प्रकंपन फैलाते रहे। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद सरोज देवी। ये कार्यक्रम इतना सुंदर चल रहा है कि मन कर रहा है कि सुनते ही रहें, मेडिटेशन का अनुभव करते ही रहें, लेकिन समय की भी मर्यादा है। इस कार्यक्रम को 8 बजे तक पूरा करना था, लेकिन अचानक घड़ी पर ध्यान गया तो समय अधिक हो चुका है। इसलिए आगे के जो भी वक्ता हैं, मेरा अनुरोध रहेगा कि संक्षेप में ही अपनी बातों को रखें। अगले 3 दिनों तक हम यहाँ हैं, सुनने सुनाने का मौका तो मिलता रहेगा, तो अभी के स्वागत सत्र में अगर अपनी बातों को संक्षेप में रखें तो हम इसको समय से समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में आप सबको परमात्मा के घर से ईश्वरीय सौगात भी दी जानी है और हमारी आवाज बाहर पहुंच रही हो, और बाहर जो मेहमान हो यदि हम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो उनसे अनुरोध रहेगा कि वो हॉल के अंदर आ जाएं। कार्यक्रम पूरा होते ही सबको ईश्वरीय सौगात दी जाएंगी। अभी हम आगे चलते हैं। हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे डॉक्टर ललित वर्मा जी हैं, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आप हैं, फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ स्कॉलर एंड पॉलिसी एक्सपर्ट इन हेल्थ इकोनॉमिक्स हैं। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपको अपनी सेवाएं देते हुए एक लंबा अरसा हो गया, और समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एज एन IAS आपने अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, होम अफेयर्स है। आप इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ ही आप हेल्थ इकोनॉमिक्स में PhD हैं, आप MBBS भी हैं, LLB भी हैं। तो इस तरह के प्रखर वक्ता हमारे बीच हैं जिनको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समय की सीमा है, बोलना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है कि संक्षेप में ही अपनी बातें रखें। तो हम इनवाइट करते हैं अपने आज के गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय ललित वर्मा जी को।
ओम शांति। मंच पर आसीन सभी सम्मानित विभूतियां, इस हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने सुंदर कार्यक्रम में जो आज का सबसे ज्यादा प्रासंगिक विषय है, उस कॉन्फ्रेंस में, उस इंटरेक्शन में मुझे बुलाया गया, प्रतिभाग करने का मौका दिया और अपने कुछ विचार आप सब लोगों से शेयर करने का मौका दिया है। मुझे कहा गया कि मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में रखूं, तो मैं अपनी बात एक छोटी PPT के माध्यम से प्रेजेंट करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, स्वामी विवेकानंद ने यह कहा कि अगर आपको ग्रो करना है तो कृपया बाहर ना देख के अपने अंदर देखिए। स्वामी विवेकानंद हु वॉज द फर्स्ट स्पिरिचुअल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही मेड दिस स्पीच सम टाइम इन 1932 इन वर्ल्ड पीस एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट। नो वन कैन टीच यू, नो वन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देर इज नो अदर टीचर एक्सेप्ट योर ओन सोल। वी आर बेनिफिशियल दैट वी हैव गाइडिंग वेरियस दीदीज एज वेल एज वेरियस ब्रह्म कुमारीज, बट दे ऑल कैन ओनली हेल्प अस टू ग्रो और रियलाइज हु वी आर, हु फॉर अवर इनर ग्रोथ, for our spirituality, but ultimately we'll have to come back to our own soul. Spirituality matters in 20th century. It has been emphasized by mere se pehle vaktaon ne kaha ki hum log bahut tarakki kiye hain, magar kya wo tarakki sahi mein hame khushi la payi hai. मेडिकल एडवांसमेंट में हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, हर तरह की दवाई ला रहे हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, मगर शायद आज भी कम से कम 50% बीमारियों का तो ना इलाज है ना उनका कारण है हमारे पास. अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया. ह्यूमन एग्जिस्टेंस डेंजर में है. टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि वर्ल्ड के किसी कोने में किसी से तत्काल बात कर सकते हैं, बट आर वी रेडी टू विजिट अवर पेरेंट्स एंड ब्रदर हु मे बी लिविंग ओनली फ्यू किलोमीटर्स अवे. राइज ऑफ स्ट्रेस एंड एलिनेशन है. वर्ल्ड वॉर टू का एक्सपीरियंस हमें याद है. व्हाट वाज द वन ऑफ द कॉजेज फॉर डिस्ट्रक्शन. ये हमारा एडवांसमेंट था कि हम लोगों के पास एटॉमिक बम था, किसी पर्टिकुलर पावर के पास था, विच कॉज द डिस्ट्रक्शन. मे बी इफ दैट स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमन टच वॉज देयर, दीज ऑल कुड हैव बीन अवर्टेड. वी ऑल नो रशिया और यूक्रेन का वॉर कब से चल रहा है. इंडिया मे बी ट्राइंग टू मीडिएट एज ए पीस मेकर, बट एज वी से द राइज ऑफ एलिनेशन स्ट्रेस etc. is huge. We have got a huge gap between material growth and inner world growth. We all know Alfred Nobel, the gentleman who is known for Nobel Peace Prizes, he repented while inventing or making a foundation for Nobel Peace Prizes. He was the man who was experts of bombs. He was one of the contributors towards atomic bomb. And in his later life, he tried to repent by making a foundation jo researchers ko pure research, applied research karne ke liye madad kiya. Warren Buffett, who is a very well-known economist, he says after a particular stage when he had a lot of wealth, usne realize kiya, jab main usko dena chalu kiya, tabhi mujhe kuch happiness mili. Once I started distributing that wealth or anything, only then I was able to earn some peace of my mind. बात हो चुकी है कि नीति और निष्ठा बहुत दोनों जरूरी हैं. अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम सब लोग जानते हैं RTI. It was a innovation for administration, but at the same time, without commenting on what is truth, I am nobody to tell the truth. The current technology and the question marks raised towards EVM raises a huge question. Ki technology itni na badh jaye ki hum log usko misuse karne lage. We all know number of cases where adult homes are filled with persons where the children are ready to put in the bills, but they don't have time. Is this the spirituality? Is it the inner growth? बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम अपना इनर ढूंढें किसी तरीके से. आई वुड लाइक टू से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों अलग चीजें हैं. इंडिया ऐसी जगह है साहब जहां रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का यूनियन हमेशा से रहा है. अभी हम लोग दो दिन पहले गणेश चतुर्थी मनाए हैं. गणेश जी इज ए सिंबल ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन को एग्जिस्टेंस. गणेश जी की बॉडी ह्यूमन है बट ही हैज नॉट ए हेड ऑफ एन एलिफेंट. ये हमारी वो संस्कृति है जिसमें हम पेड़ों की पूजा करते रहे, जहां हम पहाड़ों की नदियों की पूजा करते रहे. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, इट इज बेसिकली होलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ इनर सेल्फ एज वेल एज टूवर्ड्स आउटसाइड. You have to go along with the nature. You have to go with the rest of the human beings. It is basically looking for meaning and purpose of life, where one is able to connect with something beyond oneself. अपने आप से बढ़ के आप परमात्मा से और लोगों से अन्य स्पिरिट से जुड़ते हैं. ह्यूमननेस, काइंडनेस, कंपैशन इत्यादि की तरफ बढ़ते हैं. यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड को समझते हैं. हमारे यहां तो फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं साहब. हमारे वेदा बात करते हैं इटर्नल सेल्फ की. वेदा में बार बार इटर्नल सेल्फ की बात की गई है. सोक्रेटिस स्पोक ऑफ विजडम विद इन, टायोस डांस विद द फ्लो ऑफ नेचर. बुद्धा जी ने हमें बताया कि साहब हम में से हर एक बुद्धा बन सकता है. आवश्यकता है कि हमारे मन में दूसरे के प्रति कंपेशन, सद्भाव हाईएस्ट ऑर्डर का हो, और यही हाईएस्ट ट्रूथ है जिंदगी का. अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से रिगार्डिंग दिस, ऑल ट्रेडिशन विस्पर द सेम मेलोडी, वेदर इट वॉज वेदा, सोक्रेटिस, बुद्धा. नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानिए. स्पिरिचुअलिटी हैज गॉट डायमेंशंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, deeper understanding of yourself, connecting to broader spiritual nature of universe, compassion, mindfulness, interconnectedness, better relationship, which should lead for a positive growth of both the sides, mediation, as we just practiced a brief session, this also helps you to achieve inner self. We also have got a distinguished speaker from Patanjali, where Ramdev ji has been practicing pranayam, yoga, also as a part of knowing your inner self. Spirituality helps us to develop a resilience, where you reinforce your inner peace, overcome challenges, overcome grief, guilt, and resentment. And ultimately, as I say, this gives you a deeper sense of what is the purpose or meaning of you being in this world. Why you have come to this world and what is your purpose of this life? And realizing this, as it was said just before me, कि जब तक आपको यही नहीं पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो, किसकी प्रगति देख रहे हो, क्या अपने शरीर की प्रगति देख रहे हो कि अपनी आत्मा की प्रगति देख रहे हो, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इनर सेल्फ को नहीं जान पाएंगे. एज वी हैव ऑलरेडी ड्वेल्ट इन डिटेल की टुडे ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर बिकॉज देर इज ए स्ट्रेस एंड बर्नआउट. हमारे यंग बच्चे जो हैं अपना जाते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, दे मे बी अर्निंग 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, but by that time they come out, they are burned out, they are stressed, they still have got a laptop on their laps on which they keep on working. There is a huge alienation in modern society. We may have 500 WhatsApp friends, but real friend on whose shoulder you can cry, maybe only 4, 3, or maybe no. There is a huge environmental degradation which is going around everywhere. There is loss of ethical grounding. We are more in profiteering for person rather than humanity or good for larger group of persons. I have already mentioned what is the role of spirituality in human life. It builds resilience, provides balance, inner peace, harmony with nature, and as earlier said, it is the way to sukh, satya, santosh, and maybe swarga. The concept of spirituality in researcher has got another word coined for this, spirituality intelligence, what is called SQ, which acts beyond IQ and EQ and means a purposeful making capacity, where person goes for purpose-driven decisions and innovations. In Indian perspective, we have got Vedanta, who always spoke of Atman and Brahman, yoga, which is union of body, mind and spirit, Sufism, which is love and devotion, and Buddhism, which is compassion and mindfulness. And we have got a living example in this university where we all are sitting there, who is a living example how self-growth through spirituality can lead to more happiness. The ways how to achieve that also is being taught here. So we are very lucky to be part of this program, maybe it's short 3 days. But let us take whatever best we can take back. There's no point in going because I've been told that spirituality is well connected with mental health. I, being a doctor, can very well say we have got a concept of what is called psychosomatic diseases. If you are not happy, your body will start deteriorating. If you are in stress, we have heard of what is called lifestyle diseases. And ultimately, all can be treated only through spirituality, knowing yourself, connecting yourself with others, connecting, looking inside yourself. Spirituality and physical health, I have already mentioned Professor Guru Ramdev Ji. Yoga and meditation improves immunity. Healing sciences have grown. Singapore is doing a wonderful experience. It says, if any younger is living with his parents, they will get tax benefits. They all have got bands here. If you are living with your parents, that band will keep you on giving a reading and that will give you a tax benefit. It says if you are walking instead of taking a taxi, that band will keep on recording how much you have walked. So I would say they are manufacturing new blue zones. Blue zones are those where the livelihood, the life longevity is much more. By introducing spirituality, humanity, etc. into day-to-day life. I already mentioned stress reduction. It is always one of the buster for the stress has been trying to cry over shoulder of your relative or any friend. We have a Japanese concept of what is called that in case you are too much in stress, go and walk in a forest. Just forget everything. They say by going to forest for 10 minutes, you will leave your mobile back. Just go listen ki wahan saab patto ki kya sarsarahat hai, chidiya kya bol rahi hai, dur kya koi aur awaaz aa rahi hai, koi janwar bol raha hai. And it will give you a lot of peace. It is getting you, yourself connected with the nature. It is a very old saying. Agar aap daily 10 minute apne aap se nahi mile, akele nahi baithe aur ye nahi socha main kaun hu, kahan se aaya hu, kya kar raha hu, you are missing a chance to meet the most wonderful person whom you have known. Apne aap se nahi mile aur sari duniya se mil liye to jeevan ka koi arth nahi hai. Last, I am finishing off. Spirituality in workplace, we have to have a ethical leadership. Unless until the top is ethical, he is not mindful, he is not oriented towards employee as well as his colleagues, we will not be able to grow. The management has to be mindful. It is always easy to take hard decisions. But taking the problem of the persons whom you are going to regulate is being mindful. Ultimately, what in administration or in a workplace we are looking for? We have got two folds. A, to keep my inner house, my employee well-being and engaged. B, whatever we are doing to various population whom we are interacting, to make their life easy, provide them better civil services, better health, better education, and at the same time, let them be participatory in that. Unka bhi kuch feedback le lein. So to sum up, I would just say, the topic chosen for the workshop is wonderful, and we have got a tremendous potential to go back after 3 days. At least 20% more entitled or more enlightened when we came here. Thanks a lot. Thank you.
थैंक यू सो मच डॉक्टर ललित वर्मा जी. और अभी हम आज के दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री डॉक्टर राजेश सक्सेना जी को बुलाने जा रहे हैं. और डॉक्टर राजेश सक्सेना जी जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है उसके साइंटिफिक एडवाइजर हैं, साथ ही साथ एक्स सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड सीईबीटी एंड एनवायरमेंट डिवीजन मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हैं. आपका बहुत लंबा चौड़ा बायोडाटा है, मैं समझता हूँ आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हूँ. आप साइंटिफिक एडवाइजर के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ लीडर इन रूरल डेवलपमेंट एंड लाइफ साइंसेज हैं. तो अभी हम अपने दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाना चाह रहे हैं अपने इंस्पिरेशन देने के लिए.
आप ओम शांति, सभी को मेरा नमस्कार. सम्माननीय मंच, इतने प्रबुद्ध लोगों के साथ जो इस फील्ड में बैठने का मौका मिला मुझे, बाकी तो साइंटिफिक फोरम के साथ बैठता था कई बार, और जैसा कि आप देख रहे हैं घड़ी का कांटा भी आगे बढ़ रहा है. तो दोनों तीनों चीजें, मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपसे कुछ चीजें बात करूंगा. पूर्व वक्ता हमारे बहुत सारी चीजें बता चुके हैं. चूंकि मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर जमीन में माइक्रोब्स भी देखे हैं, काम किया है, तो मैं चूंकि एक सरकारी दायित्व में था 35 साल, अब मैं उसके जो सेट टारगेट्स होते थे उस पर काम करता था. मन की कम सुनना पड़ता है, जो गवर्नमेंट टारगेट दे देती है उस पर हमें काम करना पड़ता है, मन कुछ और भी बोलता है. पर जब रिटायरमेंट हुआ मेरा तो मैंने मन की सुनना शुरू कर दिया, जो अंदर से मुझे खुशी देती है उस काम को करता हूं. तो मैं जैसा कि अभी आज का टॉपिक है कि अध्यात्म और मानव अस्तित्व और नए आयाम, तीनों चीजें हैं. अध्यात्म हमारे साइंटिफिक फोरम में पर बोलते हैं लोग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, मैं उसको उल्टा बोलता हूं, अध्यात्म एंड विज्ञान. क्योंकि पहले अगर आदमी आध्यात्मिक है तो विज्ञान अच्छे से कर सकता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति आएगी, क्या है भला क्या बुरा है, मन की सुनेगा. और सिर्फ विज्ञान करेंगे तो हम विज्ञान की बात करेंगे कि ये हमको बनाना है, उसका आगे रिजल्ट क्या होना है हमें नहीं मालूम. तो मेरा जो सोच है कि मन आपका सबसे पहले बोलता है आपका, फिर आपके ऊपर दिमाग हावी होता है आपका. तो मैं अक्सर पहले जो मन बोलता है उसकी सुनता हूं. मन कम बोलता है, एक बार बोलता है और आपने पकड़ लिया, फिर दिमाग लगाइए उसमें आप. तो अगर इसी तरह हमने, अगर हम आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक शब्द अगर किसी एक सामान्य आदमी से हम बात करते हैं तो उसको लगता है कोई ज्ञान दे रहा है हमको, कुछ एक चीजें होंगी हमसे बोल रहा होगा इसको फॉलो करो. उसको नहीं मालूम है कि अध्यात्म एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें आत्मचिंतन से लेके आत्ममंथन से लेके पर्यावरण से लेके सोसाइटी हमारी, समाज, वृक्षारोपण, नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ आता है. कहा जाता है कि हमारा देश पहले आध्यात्मिक था, जब धीरे धीरे अध्यात्म के से हमारा हम भूमिक हुए तो ये लड़ाई झगड़े आपस में, स्टेट से स्टेट की लड़ाई, लोगों के आपस की वैमनस्य ये बढ़ गया, क्योंकि हम आध्यात्मिक अब नहीं रह गए. आप वो सोचिए कि जो महानगरों में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं. मैं बेटी के पास जाता हूं, मुझे नहीं मालूम एक साल से के सामने कौन रह रहा है उसके. और जहां मैं भोपाल में रहता हूं, आए दिन सब्जियों का आदान प्रदान होता है, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, हम उनके बारे में खोज खबर रखते हैं. ये आध्यात्म है कि आप अपने जो करीब रह रहे हैं उसका भी ध्यान रखते हैं, आप पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं. हम गणेश उत्सव भी मनाते हैं, हम दूसरे हमारे साउथ के दोस्त हैं उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, हमारे मुस्लिम साथी हैं उनके त्योहारों में साथी हुए हैं. तो जब समाज को लेके हम चलते हैं, समाज के हित के बारे में सोचते हैं, और जो नेचर ने हमको दिया है, आप सोचिए कि जमीन में पानी, पर्वत, आप इधर माउंट आबू में होंगे कितना फॉरेस्ट है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं. तो ये सब हमने नेचर ने दिया है, उसको लेके हम जब आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा अध्यात्म है. और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अभी 2021 में अहमदाबाद में मिशन लाइफ की स्थापना की थी, अनाउंसमेंट किया था मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के हितैषी जो आपका क्रियाकलाप हो वो हमारी लाइफ स्टाइल है. आप देखिए लाइफ स्टाइल कितनी खराब हो चुकी है. हम पहले, अब चूंकि पॉल्यूशन हो रहा है, हम पहले कुएं का पानी पीते थे, उसी में हम बच्चे मेढक भी मारते थे, नहीं होता था, घुटनों का दर्द कम होता था. आज ही मैंने रास्ते में पूछा कि भाई हमारे मेरी कॉलोनी में 15-20 लोगों का घुटने में दर्द होता था, कौन से डॉक्टर को दिखाएं क्या करें. मैंने कहा एक बार मैं चलता हूं तुम्हारा आरओ देखता हूं, टीडीएस 4260 टीडीएस था उसका। घुटनों में दर्द तो होना ही है क्योंकि अब उनकी भी मजबूरी है कि पानी क्या नाम है गंदा आता है, टीडीएस हाई है 400 से ऊपर है। तो बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ स्टाइल जो है उसके बिगड़ने से भी हम परेशान हो रहे हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपसे बोला कि दिल की बात सुनी है, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में काम किया जो सैटेलाइट पिक्चर लेता है, उससे फॉरेस्ट से लेके वाइल्ड लाइफ, ग्राउंड वाटर सब कुछ हमने देखा है और उसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। अगर हम सैटेलाइट के बिना पिक्चर के काम करें तो हम कुछ भी मैनिपुलेशन कर देते हैं। इसी तरह दिल होता है, दिल आपको अपना आईना दिखाता है कि आप क्या हैं। और मैं तो कई बार ये भी बोलता हूं कि सब दुनिया में आप कितने भी बड़े अधिकारी हो जाओ, सबसे अच्छी क्रिटिक आपकी पत्नी होती है, वो आपको आईना दिखाती है कि आप क्या हो। उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, कई लोग झगड़ा करने लगते हैं तुम मेरे बारे में बोलती हो, पर जो पत्नी बोलती है आपके बारे में राय वो मान लेना चाहिए कई बार। तो हम लोग बात कर रहे हैं अध्यात्म और मानव अस्तित्व की। बहुत सारी चीजें की है मैंने, मैं किसानों के बीच में भी बैठा हूं और जहां अभी मैडम ने बताया था रिसर्च के बारे में, कई बार पीएचडी का वाइवा लेने जाता हूं तो थीसिस में सिर्फ उसका टारगेट रहता है कि मेरी पीएचडी हो जाए, क्योंकि अभी हायर एजुकेशन में जाने के लिए या आपको जाने के लिए पीएचडी जरूरी होता है और जो गाइड होते हैं हमारे उनके लिए भी बायोडाटा बढ़ाना जरूरी होता है कितना क्या किया। पर थीसिस में मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका 30% एटलीस्ट सोसाइटल इम्पैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो आरडीसी में पास ही नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी थीसिस आती हैं, पीएचडी होती है जो यूनिवर्सिटी के आले में पड़ी होती है, जब किसी को रिसर्च मिलता जुलता टॉपिक दे दिया जाता है तो उसको वो देख लेता है, उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल लेता है उसमें से। तो समाज के लिए अगर आपको काम करना है, मैं समय की सीमा भी है, तो आप मन जो बोले वो करिए, समाज के साथ जुड़िए। एक चीज और बताऊं, एक रिसर्च में आया है कि जो लोग जितना अधिक ग्रीनरी के बीच में रहते हैं उनकी लाइफ उतनी बढ़ जाती है। आप महानगरों में देखिए और एक गांव में देखिए, जो गांव है जंगल के बीच में जाइए, नहीं है आपको मन बेचैन है, आप किसी अच्छे बड़े घने जंगल या बगीचे में खड़े हो जाइए, एक घंटे देखिए, चिड़ियों की चहचहाट सुनिए और पक्षियों का कलरव, बंदर आए यहां आप देखेंगे, यहां बाहर जाएंगे कितने बंदर हैं। मैंने प्राइमेट इकोलॉजी पे भी काम किया है, काले मुंह के बंदर आपको दिखाई दिए होंगे, लाल मुंह के होते हैं, वो मध्य प्रदेश में चित्रकूट उस तरफ मिलते हैं, तो उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। हालांकि ये जो अभी ब्लैक फेस वाले थे ये शर्मीले होते हैं बहुत बंदर, और लाल मुंह वाले बंदर वो आपके पास आ जाते हैं। तो नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना आपकी लाइफ स्टाइल ठीक होगी। और आदरणीय वर्मा साहब ने भी बताया था कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बीमार होता आदमी, मेरा मानना है कि 50% बीमारी होती है 50% मानसिक बीमारी होती है आदमी को। आपको चार दिन कोई बोल दे कि आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं तो आप पांचवें दिन शीशा देखना शुरू कर देंगे और कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे आप। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है, इसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हमारे 17 सेट हैं भारत सरकार ने, और उसके सब गोल्स भी हैं और उसको 30 तक प्राप्त करना है, जिसमें सब में यही दिया है लाइफ स्टाइल आप चेंज करो अपनी। और आध्यात्मिकता बहुत सारी चीजों का सम्मिश्रण है, चाहे वो समाज के लिए बात हो, चाहे आत्मचिंतन हो, मनन हो आपका, योगा हो, प्राणायाम हो। लास्ट में यही बोलूंगा जो बात होती है कि आप 5 दिन बाद जब घर आते हो और मटकी या उसका पानी पीते हो तो आपको कुछ क्या स्मेल आती है, क्यों आती है, टर्बिटी उसकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं वो बढ़ जाती है, तो हल्की स्मेल आती है आपको, क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसी तरह प्राणायाम करिए, आप ध्यान को केंद्रित करिए, प्राणायाम से ऑक्सीजन जाती है, जितना ज्यादा ऑक्सीजनेटेड आदमी रहेगा उसकी सोच उतनी सकारात्मक रहेगी, और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो निगेटिविटी आ जाती है। इसीलिए ध्यान और योग के बारे में जब बताया जाता है कि आप ध्यान फोकस करो अपने दिमाग में और ऑक्सीजन को इनहेल करो अधिक से अधिक, यही चीजें, बहुत सारी चीजें बोल दी गई हैं, समय भी कांटा आगे बढ़ रहा है, हम लोग तो वैसे भी बदनाम होते हैं प्रोफेशन में कि लेक्चर देने के आदि होते हैं, तो मैं यहां विराम देता हूं और आप सबको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सक्सेना जी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अमूथा वर्थ राजू फ्रॉम बुकिट मर्तजम हॉस्पिटल मलेशिया टू एक्सटेंड हर ग्रीटिंग्स। डॉक्टर अमूथा इज MBBS एंड सी इज MD इन इमरजेंसी मेडिसिन एंड सी इज सर्विंग इन इमरजेंसी केयर फॉर लास्ट 14 ईयर्स and as an emergency physician for last 5 years And she is also practicing Raj Yoga meditation for last 9 years. So I would like to invite Dr. Amutha to extend her greetings. Thank you.
Thank you for the kind introduction, brother. Om Shanti and greeting of peace from Malaysia. Sorry, I'm speaking in English because I don't know much Hindi. So, first of all, I would like to congratulate the organizing team, the Spark team, to organize such a wonderful, actually this is a very beneficial conference that we don't have this opportunity in Malaysia. I think you all have to clap for yourself that you had these opportunities. And I'm glad that I can join this conference. It's okay, never mind. I can understand here and there Hindi. But I could understand and I can gain much knowledge from this. I got to know about this conference when Spark team, Shrikant Bhai and the team came to Malaysia about 2 to 3 months ago. So actually it was when they came, we got arranged a seminar in our hospital in a topic of positive and negative emotion, effect of the positive and negative emotion to the brain with the EEG evidence. So it was a great opportunity for us to arrange this program for the healthcare staff and also for the administration staff in our hospital. Our hospital is a second oldest hospital in Malaysia. It means the age of hospital is 144 years old. So it's still sustaining and we are still serving. So when the Spark team came and gave a brief on how the negative thought affect the brain with the evidence of EEG, not only that, with their workshop, it was an eye-opening, a big eye-opening for the all the staff and also our director. So when I got to know this conference, I told him that, can I go? He immediately agreed. Because why? Currently when we see, I think here also saying, all the hospital is overloaded with patients. The disease that manifests is not because of us, it is us. When I forget who am I. As D.D. Ambiga was mentioning, peace is missing and it goes into pieces. There is no peace. And diseases is manifested. So disease manifestation and they are coming to the hospital to get a treatment. By prescribe them the medication, I don't think so we can heal them. It is not by giving medication only. But you have to go introverted, go into yourself and identify where am I wrong? Am I always right? Am I always wrong? What is here? Mental stress. The main reason today everybody is falling into illness is because loss of peace and there is a disease in mental. So these makes the hospital is overloaded with patients. So rather than blaming anyone or blaming the nature or blaming everybody, we have to think, go introverted, think for yourself. So this is an opportunity also for me to know, to get more knowledge about this Spark team, and I can, in future, I can use this knowledge in my profession. Not only that, I also can liaise with our institute, the research institute in our hospital, in Ministry of Health, and come up with future research papers also. So with that, thank you. Om Shanti.
Thank you so much, Sister Amutha. अभी हम लोग आज का ये जो सत्र है रिसेप्शन सेशन उसके अंत में पहुंच चुके हैं. बस थोड़ा सा प्रोग्राम ब्रीफिंग बाकी है, उसके बाद आप सब भोजन पर जाएंगे, परंतु उससे पहले आपको ईश्वरी सौगात दी जाएगी, उसको लेते हुए जाएंगे. और सबसे पहले जो मंच पर आसीन हमारे माननीय अतिथिगण हैं उनको ईश्वरी सौगात दी जाएगी.